और पराशर ऋषि को सुनाया। पराशर ऋषि ने पुलत्स्य ऋषि के कहने पर मैत्रेय मुनि को सुनाया और मैत्रेय मुनि ने इसी भागवत का ज्ञान आगे चलकर विदुर जी को दिया। यह है भागवत की दूसरी परंपरा। और भागवत की तीसरी परंपरा, यह श्रीमद् भागवत का ज्ञान भगवान नारायण ने ब्रह्मा जी को दिया, ब्रह्मा जी ने नारद को दिया, नारद जी ने वेदव्यास जी को दिया, वेदव्यास जी ने सुखदेव गोस्वामी को दिया, सुखदेव गोस्वामी ने परीक्षित और शुद्ध गोस्वामी को दिया, और शुद्ध गोस्वामी ने यही भागवत का ज्ञान नैमिषारण्य क्षेत्र में 88,000 ऋषि मुनि और उसमें से प्रधान शौनक ऋषि को प्रदान किया। तो प्रश्न होता है कि यह भागवत तो कई लोगों ने कहा है, तो हमारे पास कौन सा भागवत है? कृष्ण ने ब्रह्मा विष्णु महेश को कहा वह भागवत है, या विदुर जी वाला भागवत है, परीक्षित वाला है, या शुद्ध गोस्वामी? तो भक्तों, वर्तमान में हमारे पास जो भागवत है, यह भागवत शुद्ध गोस्वामी के द्वारा नैमिषारण्य में 88,000 ऋषि मुनियों को जो ज्ञान दिया गया, वह भागवत हमारे पास उपस्थित है। और आइए हम वह नैमिषारण्य की कथा प्रारंभ करें। उसके पहले श्रीमद् भागवत के प्रथम स्कंद के प्रथम अध्याय के प्रथम श्लोक में, क्योंकि इस भागवत के रचयिता, इस भागवत को लिपिबद्ध करने वाले श्री वेद व्यास जी हैं, और वेद व्यास जी इस भागवत ग्रंथ को लिखने से पहले, नैमिषारण्य की कथा प्रारंभ करने से पहले 3 श्लोक में मंगलाचरण करते हैं। प्रथम श्लोक में वेद व्यास जी भगवान को प्रणाम करते हैं। अब देखिए, अब थोड़ी बुद्धि की बात मैं आपको कहता हूं। भागवत लिखने वाले वेद व्यास जी हैं, और वेद व्यास जी जिसको प्रणाम करते हैं वही भगवान हो सकते हैं, अथवा दूसरे शब्दों में भागवत में जो लिखा है वही सत्य हो सकता है। तो अब देखिए, भागवत के प्रारंभ में प्रथम अध्याय के प्रथम स्कंद के प्रथम अध्याय के प्रथम श्लोक में वेद व्यास जी क्या लिखते हैं। वेद व्यास जी की कलम चल रही है और उस कलम में क्या लिखा जा रहा है, आप ध्यान से सुनिए, मेरे पीछे बोलिए, ओ वासुदेवाय, ॐ नमो
भगवते वासुदेवाय।
वेदव्यास जी इस प्रकार से ओम नमो भगवते वासुदेवाय और इस श्लोक को और आगे बढ़ाते हैं। शायद आप ये नहीं बोल पाएंगे, केवल सुनिए।
जन्मादस्य यतोन्व आदितरत चार्थेषु भीयस्वरा तेने ब्रह्महृदाय आदिकवये मुह्यन्ति य
वेदव्यास जी श्रीमद् भागवत के प्रारंभ में प्रथम श्लोक लिखते हैं। यदि कोई व्यक्ति यह प्रथम श्लोक समझ गया तो पूरे भागवत को समझ गया, और यदि कोई व्यक्ति यह प्रथम श्लोक को नहीं समझ पाया तो पूरा भागवत भी यदि सुन ले तो भागवत को नहीं समझ सकता है। इसलिए प्रथम श्लोक में थोड़ा मैं आपका समय लूंगा और इसकी व्याख्या होगी, आप ध्यान से सुनिए। प्रथम श्लोक में वेद व्यास जी लिखते हैं, ओम नमो भगवते वासुदेवाय जन्मादस्य तोन्वादि तरत चार्थे शुभिज्ञ स्वराट तेने ब्रह्मरिदाय आदि कवये मुह्यन्ति यत सूर्य तेजो वारि मृदाम यथा विनिमयो यत्रति सर्गो मृषा धामना स्वेन सदा निरस्त कूकम सत्यम परम धीमहि। इतना प्रथम श्लोक में वेद व्यास जी लिख रहे हैं। ये श्लोक का भाव क्या है यह आप समझ लीजिए। इस श्लोक में वेदव्यास जी कहते हैं, धीमहि ध्यायेम, हम ध्यान करते हैं। वेदव्यास जी एक वचन में नहीं बहुवचन में कह रहे हैं कि हम ध्यान कर रहे हैं। इसका अर्थ यह है, वेदव्यास जी सर्व काल में सर्व स्थान में अकेले नहीं, अपने सभी शिष्य को अपने अखबार में भरकर एक साथ भगवान को प्रणाम करते हैं और भगवान का ध्यान करते हैं। तो सत्यम परम धीमहि में हम भगवान का ध्यान कर रहे हैं। तो पूछा जाए कि किसका ध्यान करते हैं, तो कहते हैं सत्यम ध्यानम, हम सत्य का ध्यान करते हैं। इस संसार में जो सत्य है उसका हम ध्यान कर रहे हैं। अब संसार के जो अलग अलग कथाकार हैं यहीं पर गड़बड़ कर देते हैं और हम आपको यही समझाने के लिए आए हैं, गड़बड़ मत कीजिएगा। संसार के लोग कहते हैं कि ये सत्यम परम धीमहि, वेदव्यास जी कहते हैं मैं भगवान का ध्यान करता हूं। और वो भगवान कैसे कहते हैं, सत्य, उस सत्य रूपी भगवान का ध्यान करता हूं। तो संसार के जो नाना प्रकार के कथाकार होते हैं कहते हैं कि वो बापू सत्य है और उस बापू का ध्यान करना चाहिए, अथवा स्वयं को लेकर कह देते हैं मैं ही परम सत्य हूं, आप मेरा ध्यान कीजिए। किसी बापू बाबा का नाम लेकर उसको सत्य मान बैठते हैं और उसका ध्यान में लगा देते हैं। परंतु वास्तव में सत्य कौन है यह यदि जानना है तो ज्यादा श्रम करने की जरूरत नहीं, इसी श्लोक को आप ध्यान से समझोगे तो बात समझ में आ सकती है। इसी श्लोक में वेदव्यास जी कहते हैं सत्य कौन है, कहते हैं ध्यायम, मैं ध्यान करता हूं। किसका, परम सत्य का, परम सत्य का ध्यान करता हूं। प्रश्न हुआ परम सत्य कौन है, तो वेदव्यास जी प्रारंभ में ही लिखते हैं ओम नमो भगवते। पूछा गया वह परम सत्य कौन है, तब वेदव्यास जी कहते हैं वसुदेव नंदन वासुदेव श्याम सुंदर भगवान कृष्ण ही परम सत्य है। हरे कृष्णा
कृष्णा कृष्णा हरे हरे, हरे राम 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 हरे।
परम सत्य परम ईश्वर भगवान यदि कोई है तो वह है वसुदेव नंदन वासुदेव भगवान श्री कृष्ण। इसके अलावा परम सत्य किसी को नहीं कह सकते। यदि यहां पर वेदव्यास ने कहा, हम पांचवें दिन सुनेंगे कृष्ण जन्म की कथा में, वहां ब्रह्मा जी शिव जी 33 करोड़ देवी देवता ये सब लोग एक साथ भगवान कृष्ण को कहते हैं सत्य व्रतम परम त्रिसत्यम, हे कृष्ण आप ही एकमात्र सत्य हो, अरे आप तो सत्य के भी सत्य हो। और महाभारत में तो यहां तक लिखा है सत्य प्रतिष्ठित कृष्ण, कृष्ण सत्यम प्रतिष्ठित, कृष्ण में ही सत्य है और सत्य में ही कृष्ण है, सत्यापि सत्ययुग तस्मात् स्थापि नमाम्यहम्। इसलिए कृष्ण जो है सत्य के भी सत्य है, इसलिए प्रणाम और भक्ति एकमात्र कृष्ण की करनी चाहिए। वेदव्यास जी परम सत्य के बारे में अवगत करा रहे हैं, कौन है परम सत्य, वेदव्यास जी कहते हैं वसुदेव नंदन वासुदेव ही परम सत्य है। अच्छा तो वे कैसे हैं, उसका परिचय दीजिए। तब वेदव्यास जी इस प्रथम श्लोक में भगवान का स्वरूप परिचय, भगवान के तटस्थ लक्षण और स्वरूप लक्षण का वर्णन करते हैं। पूछा जाए कि भगवान श्री कृष्ण कैसे हैं, तब वेदव्यास जी कहते हैं जन्म आदि यस्य, जो भगवान इस संसार का सर्जन करते हैं, इस संसार का पालन करते हैं और इस संसार का प्रलय करते हैं, वही भगवान परम सत्य है। और आप देखिए, इस संसार का सर्जन कौन करते हैं? कोई साधारण बापू और बाबा नहीं, कृष्ण ही इस संसार का सर्जन करते हैं, यही पालन करते हैं। आप देखिए, इस संसार में एक मच्छर की टांग टूट गई हो तो कितना भी बड़ा डॉक्टर उस टांग उस मच्छर के पांव को रिपेयर नहीं कर सकता। भगवान की बनाई हुई सृष्टि भगवान ही संभालते, हम क्या संभालेंगे? तो भगवान ही, कृष्ण ही संसार का सर्जन प्रलय और पालन करते हैं, जन्म आदि। और केवल सर्जन ही नहीं करते हैं, इस संसार का सर्जन करने के बाद इस संसार में जितने भी जीव है, अन्वयात आदि इतरत, इस सभी जीवों के बारे में वे अवगत है, सभी जीवों के बारे में वे जानते हैं। हम क्या सोच रहे हैं और कब क्या करने वाले हैं, भगवान को सब कुछ पता है। इतरत अन्वयत कहते हैं, प्रत्यक्ष रूप से और अप्रत्यक्ष रूप से, डायरेक्ट और इनडायरेक्ट, भगवान संसार के जीवों के बारे में सब कुछ जानते हैं। गीता में कहते हैं, वेदाहम समतीतानि वर्तमानानि च अर्जुन भविष्याणि च भूतानि माम तु वेदन कश्चन। ये अर्जुन, संसार में रहने वाले सभी जीवों के बारे में, भूत भविष्य वर्तमान सब कुछ जानता हूं, सबके बारे में। यद्यपि मैं एक हूं परंतु सबके भूत भविष्य वर्तमान के बारे में जानता हूं। परंतु दुख की बात यह है कि इस संसार के सब लोग मिलकर भी मुझे एक कृष्ण के बारे में नहीं जान सकते, दुर्भाग्य है। परंतु भगवान अवगत है, अभिज्ञ है, स्वराट है। केवल अभिज्ञ ही नहीं, साथ ही साथ स्वराट स्वतंत्र है, परम स्वतंत्र, न सिर पर कोई। हम सब जीव भगवान की माया में बंधे हैं, परंतु भगवान संपूर्ण स्वतंत्र है, जब चाहे कुछ भी कर सकते हैं। अब हमारे पास समय बहुत कम है, नहीं तो मैं आपको सुनाता। इस संसार में हम अपने आप को स्वतंत्र मानते हैं, परंतु कौन स्वतंत्र है बताइए? सब लोग बंधे हैं और मृत्यु के पास से सब लोग बंधे हैं। मान लो इस संसार में आप जिससे सबसे ज्यादा प्रेम करते हो और वह यदि मर जाए तो क्या उसे आप जीवित कर सकते हो? नहीं, हम बंधे हुए हैं। परंतु मरे हुए को भी भगवान जीवित किए हुए हैं। याद कीजिए, सांदीपनी मुनि के वहां शिक्षा प्राप्त करने गए, गुरु दक्षिणा क्या चाहिए? सांदीपनी मुनि ने कहा, मरा हुआ पुत्र मुझे वापस चाहिए। भगवान यमराज की गोद से उसे वापस, यमराज जी ने उस समय कहा कि प्रभु इसके कर्मवश मरा है। भगवान ने कहा, कर्म फर्म कुछ नहीं, मैं इसे लेने के लिए आया हूं, मुझे दे दो। मरे हुए पुत्र को भगवान वापस लेकर आए। ये कार्य कृष्ण स्वतंत्र है। और द्वारिका में भी उस ब्राह्मण के पुत्र को भगवान वैकुंठ से वापस लेकर आए। इस प्रकार कृष्ण स्वतंत्र है, तेने ब्रह्म हृदय आदि कवये। और भगवान श्री कृष्ण की महिमा बताते हैं कि इस भगवान कृष्ण ने ही आदि कवि, आदि कवि का अर्थ होता है इस संसार का सर्वप्रथम जीव कौन है? कहते ब्रह्मा जी। ब्रह्मा जी संसार के प्रथम जीव है। और इस संसार के प्रथम जीव आदि कवि ब्रह्मा जी को भगवान श्री कृष्ण ने डायरेक्ट हृदय में ज्ञान दिया। इस संसार में तो कितने भी बड़े गुरु के पास जाओ तो क ख ग पढ़ाते हैं, पढ़ाते पढ़ाते न जाने कितने साल निकाल देते हैं। परंतु भगवान कृष्ण एक ऐसे गुरु है, पढ़ने की आवश्यकता नहीं, डायरेक्ट रिदा। भगवान ने बंसरी बजाई, बंसरी का नाद ब्रह्मा जी के कान में, कान में क्या गया? सारा वेद ब्रह्मा जी के हृदय में आ गया। ये है भगवान की महिमा। इसलिए तो कहते हैं, कृष्णम वंदे जगत गुरु देवकी परमानंदम। कृष्णम वंदे जगत गुरु, कृष्ण ही गुरु के भी गुरु यदि कोई है तो वह कृष्ण। सब कुछ ब्रह्मा जी को प्रथम ज्ञान देने वाले हैं। अब देखिए, अब जो लोग थोड़ा बहुत भागवत को सुने हैं, प्रभु जी बीच में कुछ लोग सुने हैं, तो आप देखिए कुछ लोग कहते हैं कि ये श्लोक परम सत्य कोई देवी है कोई देवता है, या अलग अलग व्यक्ति के बारे में बताते हैं। परंतु आप मुझे यह बताइए, कहते हैं तेने ब्रह्म हृदय आदि कविये, जिसने ब्रह्मा जी को डायरेक्ट हृदय में ज्ञान दिया उस परम सत्य को मैं प्रणाम करता हूं। तो परम सत्य वो है जिसने ब्रह्मा जी को डायरेक्ट हृदय में ज्ञान दिया। और ब्रह्मा जी के हृदय में डायरेक्ट ज्ञान देने वाले कौन है? क्या आप गए थे देने के लिए, या कोई बापू और बाबा गया था, कि कोई देवी देवता गए थे? कृष्ण ने दिया, इसलिए यह परम सत्य एकमात्र भगवान कृष्ण है। इतना ही नहीं, मुह्यंति यत सूर्य, और उस भगवान की लीला ऐसी है कि उस लीला को देखकर बड़े बड़े सुरा बड़े बड़े देवता भी मुह्यंति मोहित हो जाते हैं। कहते हैं भगवान को पहचानने में बड़े बड़े देवता भी मोहित हो जाते हैं, तो हम हो जाए इसमें कौन सी बड़ी बात है। बड़े बड़े देवता भगवान को नहीं जान सकते। ब्रह्मा जी की बात ले लीजिए, अब आगे ही दो शब्द पहले कहा गया है कि भगवान ने डायरेक्ट ब्रह्मा जी को ज्ञान दिया। तो जिस ब्रह्मा ने डायरेक्ट भगवान से ज्ञान प्राप्त किया है, वही ब्रह्मा जी भगवान को पहचानने में धोखा खा गए वहां द्वारिका में और ब्रज वृंदावन में दो दो बार। तो बड़े बड़े देवता भी भगवान को नहीं जान सकते हैं, और भगवान की माया इतनी अद्भुत है उसे कोई समझ नहीं सकते हैं। और धामना स्वेन सदा निरस्त कुहकम, जिस भगवान के धाम में माया का स्थान नहीं है, ऐसे परम सत्य भगवान श्री कृष्ण वसुदेव नंदन वासुदेव को मैं प्रणाम करता हूं। इस प्रकार वेदव्यास जी प्रथम श्लोक में भगवान श्री कृष्ण को प्रणाम करते हैं। तत्पश्चात वेदव्यास जी इस भागवत के अंदर क्या है विषय वस्तु का वर्णन करते हैं। धर्म प्रोजित कैत वोत्र परमो निर्मत्सराणाम सदाम वेत्येव मात्र वस्त वस्तु शिवदम तापत्र योन मूलनम श्रीमद भागवते महामुनि कृते किं वा परे ईश्वर सद्य ही अवरुद्य तेत्र कृति भी शुश्रूष भी तत्क्षणा। वेद व्यास जी कहते हैं कि इस श्रीमद भागवतम में निर्मत्सर जो मत्सरता रूपी दोष से मुक्त है ऐसे बड़े बड़े भक्तों को जानने लायक चरित्र का वर्णन हुआ है, या जो मत्सरता से मुक्त है ऐसे भक्तों के चरित्र का वर्णन हुआ है। और यदि कोई श्रीमद् भागवत को सुनता है तो तापत्रय उन मूलनम, वे आदि दैविक आदि भौतिक आदि आध्यात्मिक ये तीनों तापों से मुक्त हो जाता है। और वास्तव में यह तापों से यह दुखों से मुक्त होना ये कोई बड़ी बात नहीं है, ये तो भागवत सुनने का आनुषंगिक फल है, ये तो केवल बोनस है। भागवत सुनने का वास्तविक फल क्या है? कहते हैं सद्य ही अवरुद्यते, भागवत सुनने का वास्तविक फल वे भगवान भक्त के हृदय में कैद हो जाते हैं, बंदी हो जाते हैं, यह वास्तविक फल। और वेदव्यास जी तो भागवत की महिमा बताते हुए यहां तक लिख दिए कि भगवान को हृदय में प्राप्त करने के लिए भागवत सुनने की भी जरूरत नहीं है, भागवत सुनने की इच्छा कर दो मात्र। अभी तो भागवत शुरू नहीं हुआ है, आपके हृदय में भागवत सुनने की इच्छा हो कि मैं वहां जाऊंगा और लाल गोविंद प्रभु के मुख से भागवत सुनूंगा, सुना नहीं है। कहते भागवत सुनने की इच्छा यदि कोई कर लेता है, इच्छा करने मात्र से भगवान उनके हृदय में आ जाते हैं और हृदय में आकर उस व्यक्ति को परम पवित्र बना देते हैं। कल्पना करो भक्तों, जिस भागवत सुनने की इच्छा करने मात्र से इतना कुछ हो जाता है, उस भागवत को श्रद्धा से श्रवण यदि कर लेंगे तब क्या नहीं हो। यह भागवत की कते निगम कल्प तरो गलितम फलम सुख मुखादय अमृत द्रव संयुतम पिबत भागवतम रसमालयम मुहुरहो रसिका भूवि भावुका। श्रीमद भागवतम निगम कल्प तरु से वेद उपनिषद का यह पका हुआ फल ऊपर से नीचे आया है और बिल्कुल सेफ, न तो ये फटा है न तो गिरा है। गलितम फलम, गलित का अर्थ होता है गिरना। यह भागवत वेद और उपनिषद का फल ऊपर से गिरा है तो तब कहते हैं गिरा होगा तो फट गया होगा, जैसे आम या जामुन ऊपर से नीचे गिरता है तो फट जाता है, तो यह भागवत रूपी फल फटकर बिगड़ गया होगा, ऐसा नहीं है। यह भागवत परंपरा में सबने धीरे धीरे पकड़ पकड़ कर नीचे लाए हैं। तो मन में प्रश्न होता है, भागवत यदि फल है तो अच्छे से अच्छे फल में भी अच्छे से अच्छा फल कौन सा है? आम, मैंगो। तो अच्छे से अच्छे फल में आम में भी, वो भी रत्नागिरी में भी, रत्नागिरी आप उस आती है ना, उसमें भी गुठली और छिलका होता है। अच्छे से अच्छा आम 200 रुपए डजन यदि आम लेते हो फिर भी उसमें से गुठली और छिलका को तो निकालना ही पड़ता है। तो क्या भागवत में भी कुछ ऐसी वस्तु होगी गुठली और छिलका जैसी जो निकालने लायक होगी? तो कहते नहीं नहीं, ये भागवत ऐसा फल नहीं है, ये भागवत तो बना बनाया हुआ जूस ही है। आम का जूस यदि कोई आपको दे दे तो फिर इसमें न तो गुठली है न तो छिलका है, केवल पीना है बस, इसमें कोई छोड़ना नहीं है। इसलिए कहते पीबत भागवतम, इस भागवत को पीते रहो पीते रहो। तब प्रश्न उठता है कब तक पिए? 12 बजे से 4 बजे तक, 1 घंटा 2 घंटा? तब वेदव्यासी कहते नहीं नहीं, रसमालयम, जब तक मृत्यु न आ जाए तब तक बारंबार निरंतर पीते रहो पीते रहो। हरे कृष्णा हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 राम। परंतु वेदव्यासी अंत में आशीर्वाद देते हैं, रसिका भूवि भावुका, ये तो भाई जो रसिक है वही सुन सकते हैं और जो रस नहीं है वे तो उठकर चले जाएंगे। रसिक जो रस को जानने वाले हैं, रस माने भोजन में भी कुछ रस होता है और भक्ति में भी कुछ रस होता है, भक्ति रूपी रस को जानने वाला तो भागवत को छोड़कर कहीं जा नहीं सकता, रसिका भूवि भावुका। इस प्रकार से वेदव्यास जी 3 श्लोक में मंगलाचरण करते हैं और अब वेदव्यास जी कथा को प्रारंभ करते हैं।
नैमिषे निमिष क्षेत्रे रुषय शोनकादय सत्रम स्वर्गाय लोकाय सहस्त्रम सममासद।
नैमिष अनिमिष क्षेत्रे ऋषय शौनक आदय। एक समय की बात है, अनिमिष क्षेत्र में जिसका नाम नैमिषारण्य था, स्थान का नाम नैमिषारण्य कैसे हुआ? कहते हैं कि द्वापर के अंत में कलयुग के प्रारंभ में कई सारे ऋषि मुनि ब्रह्मा जी के पास गए, ब्रह्मा जी को प्रार्थना की, ब्रह्मा जी हमें यज्ञ करना है, आप ऐसे स्थान का निर्देशन करो जहां पर कलयुग का प्रभाव ना हो। उस समय ब्रह्मा जी ने मनोमय एक चक्र का निर्माण किया और कहा कि जहां इस चक्र की शौणी जो है, धार जो है क्षीण हो जाएगी, वह स्थान पर कलयुग का प्रभाव कभी नहीं हो सकता है। चक्र चला, ऋषि मुनि पीछे पीछे चले और इस स्थान में आकर वह चक्र की जो धार थी क्षीण हो गई, इसलिए इस स्थान का नाम नैमिषारण्य हुआ। कुछ आचार्यों का कहना है कि यहां पर निमिष नाम के वृक्ष बहुत सारे हैं, तो निमिष नाम के वृक्षों की संख्या अति होने के कारण स्थान का नाम नैमिषारण्य हुआ। तो कुछ आचार्यों का कहना है यहां पर निमिष नाम के ऋषि रहते हैं, इसलिए स्थान का नाम नैमिषारण्य हुआ। खैर जो भी हो, कहते नैमिषारण्य क्षेत्र में ऋषय जो है बहुवचन में है, इसका अर्थ है एक नहीं बहुत सारे ऋषि मुनि एकत्रित हुए थे। शौनक आदय, परंतु ये सभी ऋषियों में सबसे ज्येष्ठ कौन थे? कहते हैं शौनक ऋषि। नैमिषारण्य क्षेत्र में कई सारे, आचार्यों का कहना है 88,000 ऋषि मुनि एकत्रित हुए थे, और उसमें सबसे श्रेष्ठ शौनक ऋषि थे। क्योंकि जब यह सब ऋषि मुनि नैमिषारण्य में आए, 1,000 वर्ष तक यज्ञ करना था, तो ये सब लोग चिंता करने लगे कि 1,000 वर्ष तक हम लोग को यहाँ पर रहना है, हम लोग कैसे खाएंगे, कैसे पिएंगे, क्या कपड़ा पहनेंगे। तब शौनक जी कहते हैं, भोजन आच्छा धने चिंता वृथा कुर्वन्ति वैष्णवा, हे वैष्णव आप लोग भोजन खाने पीने की चिंता कर रहे हो, कपड़े की चिंता कर रहे हो, बिल्कुल वृथा करते हो। क्यों? क्योंकि जिसको प्रसन्न करने के लिए हम यहां पर आए हैं उसका एक नाम विश्वंभर है, भगवान कृष्ण का एक नाम विश्वंभर है, और विश्व का अर्थ होता है जगत, और अंबर का अर्थ होता है पोषण करने वाला, जो पूरे संसार को का भरण पोषण करे, इसे विश्वंभर कहा जाता है। कहते हैं जो भगवान इस संसार में सबका भरण पोषण करते हैं, भगवान को गाली देने वाले चोर लुटेरे का भी भरण पोषण करते हैं, क्या उस भगवान को प्रसन्न करने के लिए हम चले हैं, क्या हमारा भरण पोषण नहीं करेंगे? भगवान एक डाकू को भी हवा पानी प्रकाश भोजन देते हैं, तो उनका भजन करने वाले को तो निश्चित देंगे, चिंता करने की कोई जरूरत नहीं। इसे कहते हैं विश्वास, श्रद्धा। शौनक ऋषि को विश्वास था, श्रद्धा था। 88,000 ऋषि मुनि एकत्रित हुए हैं, और क्या करना है? कहते हैं सहस्त्रम सममासत, 1,000 वर्ष तक यज्ञ करने के लिए बैठे हैं, विश्व शांति यज्ञ। क्योंकि पता चल गया है कलयुग आने वाला है, और घोर कलयुग के प्रभाव से बचने के लिए 1,000 वर्ष तक का यज्ञ। 1 घंटे का यज्ञ करना हो फिर भी पसीना छूट जाता है। नया घर लिया है और वास्तु मुहूर्त के लिए यज्ञ करना है, पंडित जी जब लिस्ट देते हैं इतनी इतनी वस्तु लाने, कहते पंडित जी छोड़ो यज्ञ नहीं करना है, नहीं तो पंडित जी को कहते इसमें थोड़ा डिस्काउंट कर दो ना, तो पंडित जी डिस्काउंट कर देते हैं। और फिर जब यज्ञ शुरू होता है तो उसके धूल से धुएं से इतने परेशान हो जाते हैं, पंडित जी अब जब समाप्त करो इसे, क्या यज्ञ हम लोग करेंगे, ये 1,000 वर्ष यज्ञ करने के लिए बैठे हैं। तो यज्ञ के अनुष्ठान है, यज्ञ प्रारंभ है, भूत हुताक नहीं है, सब धुआं निकल रहा है। परंतु एक दिन की बात कहते हैं, एक दिन ब्रह्म मुहूर्त में भोर में,
तो एकदा तू मुनय प्रातर्हूत हुताग्नय सत्कृतं सूतमासीनं प्रपच्छो इदमादरा।
कहते हैं कि वे 88,000 ऋषि मुनि तो एकदा तु मुनय प्रातर्हूत हुताग्नय, प्रातः काल में, प्रातः काल अर्थात ब्रह्म मुहूर्त में, अर्थात सुबह 3:30 बजे जग गए थे। अब जो ऋषि मुनि होते हैं, जो सज्जन होते हैं, जो मनुष्य होते हैं, वह सुबह 3:30 बजे ब्रह्म मुहूर्त में जगते हैं। भगवान रामचंद्र हमको यही सिखाते हैं, प्रातः काल उठ के रघुनाथा, ये रघुनाथ प्रातः काल जगते थे। हम सबको रोज सुबह भोर में जगना चाहिए, परंतु हम तो इतना लेट जगते हैं। शास्त्र में लिखा है जो ब्रह्म मुहूर्त के पहले जगते हैं उसे ऋषि स्नान, देव स्नान कहा जाता है। जो ब्रह्म मुहूर्त में जगते हैं उसे ऋषि स्नान कहते हैं, और जो सूर्य उगने के बाद स्नान करते हैं उसे राक्षस स्नान कहा जाता है। प्राय हमारा राक्षस स्नान ही है, उठना चाहिए भोर में। क्यों? क्योंकि ब्रह्म मुहूर्त जो है प्रकृति के द्वारा, नेचर या भगवान के द्वारा दी गई हमको एक गिफ्ट है। क्योंकि ब्रह्म मुहूर्त में सुबह 3:30 बजे से लेकर 7 बजे तक यह ऐसा समय है जिसमें मन स्वाभाविक भगवान में जाता है, स्वाभाविक, प्रयास करने की कोई जरूरत नहीं। और ऐसी जगह पर, ऐसे समय में ही भगवान का ध्यान, भगवान का नाम लेना चाहिए। परंतु हम तो सोते रहते हैं, जैसे जैसे सुबह होती है ऐसे ऐसे नींद बढ़ती जाती है, इतना नींद में और आनंद आता है। परंतु निद्रा को वश में करना चाहिए। कभी कभी कथा सुनते सुनते भी निद्रा आ जाती है, आ जाती है इसमें कोई, क्योंकि होता क्या है, जब कोई व्यक्ति संसार के दुखों से दुखी होकर यहां पर आता है तो भक्ति का, कथा का तो यह स्वभाव है कि उसे शांति मिलती है। शांति अव्यर्थ कालत्वम निराशि मान शून्यता। तो बहुत दुखी होकर संसार की गाली खाते हुए यहां पर आया है और यहां पर भागवत कथा में इतना सुख और इतनी शांति मिलती है, नींद आ जाती है। परंतु भागवत केवल सोने के लिए नहीं है। इस संसार में कुछ लोग इतने धनी हैं फिर भी सोने की गोलियां लेनी पड़ती है। तो हम तो कहते हैं कथा में आ जाइए, सोइए आराम से। लेकिन फिर भी भागवत सोने के लिए नहीं, सोए हुए को जगाने के लिए है। भागवत सुनते समय जगना चाहिए या सुबह भोर में जग जाना चाहिए। और जो लोग नहीं जगते हैं उसे बड़े बड़े भक्त साधु संत जगाते हैं। कैसे जगाते हैं पता है, जानते हैं? साधु लोगों का जगाना भी कुछ अलग होता है। घर पे माताएं जगाती हैं वो भी कुछ अलग जगाती हैं, और साधु लोग जगाते हैं वो तो मीठी वाणी में जगाते हैं। कैसे जगाते हैं? उठ जाग मुसाफिर
भोर भई अब रेन कहां तू सोवत रे।
आइए सब लोग, हे मुसाफिर तुम जाग जाओ, कहते हे मुसाफिर उठ जाओ। वास्तव में हम सब लोग मुसाफिर हैं। गीता में भगवान कहते हैं शरीर यात्रा अपनी, हम सब लोग यात्रा में हैं। और यात्रा में रहने वाले कभी सोया नहीं करते। तो जो लोग यात्रा में होते हैं उसे कभी सोना नहीं चाहिए। उठ जाग मुसाफिर भोर भई, हे मुसाफिर उठ जा, हम सब लोग मुसाफिर हैं। ये शरीर जो है एक स्टेशन है, ऐसे 84 लाख प्रकार के स्टेशन है, और इसका गंतव्य स्थान भगवान का धाम है। अब तक हम लोग धाम में पहुंचे नहीं है, स्टेशन में है। और यदि हम सोते रहे तो स्टेशन चला जाएगा। कभी आप ट्रेन में बैठे हो, यात्रा में मुसाफर मुसाफर मुसाफरी कर रहे हो, और उसमें यदि सो गए तो स्टेशन चला जाएगा। वैसे ये बहुत सुंदर ट्रेन मिली है, परंतु इसमें बैठकर यदि हम सोते रहे तो भगवान का धाम हम छोड़ देंगे, चला जाएगा। इसलिए कहते हैं
उठ जाग मुसाफिर भोर भई अब रेन कहां तू सोवत है। अब रेन कहां तू जो सोवत है वो खो।
जो सोते हैं वो हमेशा खोते हैं।
जो सोवत है वो खोवत है,
काफिर अपनी आंखें खोल और अपनी ये आंख भगवान में लगा।
तू नींद से अखियां खोल जरा,
नींद से अखियां खोल जरा,
और अपने प्रभु से ध्यान लगा,
और अपने प्रभु से ध्यान लगा।
भगवान से प्रेम नहीं होता है सोते सोते आंख बंद करके। यदि हम जगेंगे नहीं और भगवान को देखेंगे नहीं तो ऐसे प्रेम नहीं होगा। भगवान से प्रेम करने के लिए सुबह जगना होगा और जगकर मंगला आरती में भगवान का दर्शन करना होगा, तब प्रेम होगा।
प्रभु जागत है तू सोवत है,
प्रभु जागत है तू सोवत।
जब हम किसी को जगाने जाते हैं कि भाई जगो जगो सुबह हो गई, तो कहते बाद में जगाना, कहते जल्दी जगो भक्ति कर लो आज, कहते कल करेंगे कल करेंगे। तो भक्त बहुत सुंदर गाते हैं,
जो कल करना सो आज कर ले,
जो कल करना सो आज कर ले,
जो आज करना सो अब कर ले,
जो आज करना सो अब कर ले।
जब
गांव में रहते हो इसलिए जानते होंगे, हमारे खेत में कई सारे धन धान उगते हैं, तो पहले से ही उसका ध्यान रखेंगे तो वह अनाज बच जाएंगे। और यदि ध्यान नहीं रखेंगे और चिड़िया जब खेत चुग जाएगी तो फिर मन पछताने से कोई फायदा नहीं है, इसलिए पहले से ही जग जाना चाहिए।
पछताए क्या होवत है,
उठ
जाग मुसा फिर मोर भई, अब रैन कहाँ तू सोवत है, जब पाप की गठरी शीश धरी, अब शीश पकड़ क्यों रोवत है,
अब शीश
मैं तो सो रहा हूँ, मुझे सोने तो जगकर क्या करना है। तब भक्त कहते हैं जगकर भगवान का नाम लेना है।
हरे कृष्णा हरे
कृष्ण बड़े हैं, कृष्ण बड़े हैं, कृष्ण
माधवर नागर नंदा भजर मन गोविंदा
उठ जाग मुसाफिर भोर भई। इसी बात को चैतन्य महाप्रभु बंगाली में गाते हैं, जीव जागो गोरा चांद बोले। हे जीव, कब तक तू पिशाची की गोद में बैठा रहेगा, जग जा। वास्तव में इसके दो अर्थ है। एक तो जो रोज रात को सोते हैं जल्दी उठते नहीं, उसे जगाने की बात हो रही है। और कुछ लोग तो ऐसे हैं जगह जगह सो रहे हैं, आंखें खुली हैं, बैठे हैं, बोल रहे हैं, परंतु ज्ञान न होना ये भी एक सोना ही है। तो दोनों लोगों को जग जाना चाहिए। भक्त लोग उठा रहे हैं, जगा रहे हैं, नहीं तो अंत में कहते हैं जल्दी जगा नहीं, भगवान का दर्शन किया नहीं, भगवान की भक्ति नहीं की और जीवन में केवल पाप किया। अब पाप की गठड़ी शीर धरी, अब शीर पटक क्यों रोवत है? जब पाप का बोझ ले ही लिया है तो अब क्यों पटक कर रो रहा है? पहले कह रहे थे। तो यह अवसर बीत जाए, इसके पहले सुरदास जी कहते हैं मन पछतई है अवसर बीते। अवसर बीत जाने के बाद हम लोग 7 दिन के बाद चले जाएंगे और फिर नाचने से फायदा तो है परंतु इतने भक्त नहीं मिलेंगे। तो अवसर का फायदा उठाना चाहिए। और दूसरा अर्थ, मनुष्य जीवन रूपी इतना सुंदर अवसर मिला है तो मनुष्य जीवन रूपी इस अवसर का लाभ उठाकर जीवन केवल निद्रा और आलस में न निकालकर भगवान के भजन में लगना चाहिए। तो नैमिषारण्य क्षेत्र में 88,000 ऋषि मुनि यज्ञ कर रहे हैं। एक दिन सुबह ब्रह्म मुहूर्त में 3:30 बजे 88,000 ऋषि मुनियों को पता चला कि हमारे इस नैमिषारण्य में सूत गोस्वामी आ रहे हैं। अभी अभी सुखदेव गोस्वामी से भागवत सुनकर सूत गोस्वामी आ रहे हैं तो सब लोग एकत्रित होकर मीटिंग किए कि अब यह हवन यज्ञ बंद करो क्योंकि सूत गोस्वामी आ रहे हैं। सबसे बड़ा यज्ञ तो ज्ञान यज्ञ है, ज्ञान यज्ञ की तुलना में यह द्रव्य यज्ञ कुछ नहीं है। यज्ञ बंद किया, सूत गोस्वामी का आगमन हुआ। सूत गोस्वामी को बहुत सुंदर आसन दिया, आसन के ऊपर बिठाए और 88,000 ऋषि मुनियों ने 6 प्रश्न पूछा। 6 प्रश्न भागवत में के प्रारंभ में बहुत सुंदर पूछे गए हैं कि हे सूत गोस्वामी, इस कलयुग के समस्त जीव का कल्याण हो ऐसा साधन बताइए। ऐसा कौन सा कार्य है जिसको करने से एक का नहीं सबका कल्याण होगा? हे सुध गोस्वामी, आपने तो समस्त शास्त्र को पढ़ा है, यह समस्त शास्त्र का सार तथा आत्मा एवं परमात्मा को प्रसन्न करने वाला साधन बताइए। आत्मा को प्रसन्न करने के लिए क्या करना चाहिए? क्योंकि शरीर को प्रसन्न करने के लिए कुछ भी करेंगे हम सुखी नहीं हो पाएंगे, तो आत्मा को प्रसन्न करने के लिए क्या करना चाहिए? 3रा प्रश्न पूछते हैं कि हे सुध गोस्वामी, अनंत कोटि ब्रह्मांड के नाथ बजेंद्र नंदन श्याम सुंदर भगवान श्री कृष्ण ये तो इस पृथ्वी का भार दूर करने के लिए अवतार धारण करते हैं, परंतु द्वापर युग में वे देवकी के पुत्र के रूप में साक्षात क्यों प्रकट हुए? साक्षात प्रकट अवतार लेने का क्या कारण है? इस प्रकार भगवान के अद्भुत चरित्र का वर्णन आप कीजिए। 5वीं जिज्ञासा करते हैं, भगवान श्री कृष्ण के समस्त अवतारों की कथा सुनाई और अंतिम में प्रश्न पूछते हैं कि ब्रूहि योगेश्वर कृष्णे धर्म वर्मणि तुम काष्ठा अधुनोपेते धर्मम कम शरणम गत। भगवान श्री कृष्ण इस संसार में धर्म की स्थापना करने के लिए आते हैं, परंतु भगवान श्री कृष्ण के चले जाने के बाद यह धर्म किसकी शरण में गया? कृपया करके इसका उत्तर दीजिए। वास्तव में नैमिषारण्य में 88,000 ऋषि मुनियों के प्रश्न के उत्तर के रूप में ही श्रीमद् भागवत ग्रंथ सुनाया जा रहा है। इतना कहने पर सुध गोस्वामी श्रीमद् भागवत कथा प्रारंभ किए और आइए सुध गोस्वामी 88,000 ऋषि मुनियों को नैमिषारण्य में क्या कथा सुनाते हैं। सबसे पहले 24 अवतार की कथा सुनाते हैं। भगवान श्री कृष्ण के 24 अवतार हुए, उनमें से सबसे पहला सनकादिक अवतार, ब्रह्मा जी के पुत्र के रूप में सनक, सनंदन, सनातन और सनत कुमार, ये 4 पुत्र। तत्पश्चात वराह अवतार, क्या तत्पश्चात नारद अवतार, 4था अवतार नर नारायण के रूप में जो आज भी तपस्या करके कलयुग के पाप को हर रहे हैं। तत्पश्चात 5वां कपिल अवतार, सांख्य शास्त्र का उपदेश करने के लिए। छठा दत्तात्रेय अवतार, सातवां यज्ञ अवतार, आठवां ऋषभ अवतार, नौवां पृथु अवतार, दसवां मत्स्य अवतार, ग्यारहवां कच्छप अवतार, बारहवां धन्वंतरी और तेरहवां मोहिनी अवतार, चौदहवां नरसिंह अवतार, पंद्रहवां वामन अवतार, सोलहवां परशुराम, सत्रहवां वेदव्यास, अठारहवां राम अवतार, उन्नीसवां कृष्ण, बीसवां बलराम, इक्कीसवां श्री हरि अवतार, बाईसवां हंस, तेईसवां बुद्ध और चौबीसवां कल्कि अवतार। सुध गोस्वामी 24 अवतार का वर्णन करते हैं, परंतु करने के बाद सुध गोस्वामी सिर खुजलाने लगे। अरे बाप रे बाप, मैंने तो एक गड़बड़ कर दी। ध्यान से सुनिए, मैं बुद्धि की बात करने जा रहा हूं। हमने कथा तो बहुत सुनी होगी, टीवी में भी बहुत कुछ देखा होगा, परंतु तत्व की बात सुनिए। कहते हैं कि मैंने 24 अवतार का वर्णन कर दिया, परंतु उनमें से जो एक का नाम मैंने लिया वो अवतार नहीं है, वह तो अवतार धारण करने वाला अवतार ही है। तो अपनी भूल को सुधारने के लिए एक श्लोक ऐड किया, एते चांस कला पुंस कृष्णस्तु भगवान स्वयं इंद्रियारी व्याकुलम लोकम मुड़ियंति युगे युगे। एते च अंश, मैंने ऊपर जो गिनाया ये सब भगवान के अंश और कला अवतार हैं, परंतु साक्षात भगवान कौन है? साक्षात भगवान वजेंद्र नंदन गोलोक में रहने वाले भगवान कृष्ण है। तो अब देखिए, कृष्ण जो है ये मूल भगवान है और बाकी के जितने भी हैं ये कृष्ण के अवतार हैं। इस बात को समझना बहुत आवश्यक है। कभी कभी प्रश्न होता है कि आप कृष्ण की भक्ति क्यों करते हो, ये सब 2400 कृष्ण के ही अवतार हैं, तो नरसिंह भगवान की भक्ति करो, परशुराम की भक्ति करो। ये ठीक है, ये सब कृष्ण के अवतार ही हैं, परंतु कृष्ण जो है सबके मूल है, इसलिए कृष्ण की यदि भक्ति करते हो तो 2400 अवतारों की भक्ति हो जाती है। बुद्धिमान व्यक्ति कृष्ण की भक्ति करता है, तो कृष्ण मूल है। यह बात ब्रह्मा जी भी कहते हैं, रामादि मूर्ति शुक्ला नियमेन तिष्ठन नाना अवतार मकरोद भुवनेशु किंतु कृष्ण स्वयं समभवत् परमः उमान्यो गोविंद मादि पुरुषंतम। कहते राम आदि, राम परशुराम आदि अवतार जो है ये सब भगवान के नाना प्रकार के अवतार हैं, परंतु कृष्ण स्वयं संभवत परम कुमान, कृष्ण जो है परम पुरुष भगवान है। ऐसे कृष्ण, ऐसे गोविंद का मैं भजन करता हूं। किस प्रकार कृष्ण जो है साक्षात भगवान है और जो है कृष्ण के अवतार हैं। अवतार और अवतारी में अंतर है। ब्रह्मा जी बहुत सुंदर दृष्टांत देते हैं, दीपा चिरेव ही दशान नंतर अभ्युपेत्य दीपा यते विवृत हेतु समान धर्मा। ब्रह्मा जी कहते हैं 24 मोमबत्ती पड़ी है और एक ही मोमबत्ती जल रही है, एक जली हुई मोमबत्ती से बाकी की 23 मोमबत्ती जलाकर वह मोमबत्ती को बीच में रख दो तो कोई अंतर नहीं रहेगा सब मोमबत्ती में। वैसे ही भगवान और भगवान के अवतारों में कोई अंतर नहीं है, परंतु तत्व से यदि हम देखें तो जो पहली मोमबत्ती थी वो सबका मूल है, क्योंकि पहली मोमबत्ती से तो सभी मोमबत्ती जल रही है। वैसे ही कृष्ण और कृष्ण के अवतार में कोई अंतर नहीं है, परंतु तत्व से, क्योंकि कृष्ण से ही सब अवतार हुए हैं, इसलिए कृष्ण सभी अवतारों के मूल है। तो इस प्रकार कृष्ण जो है सभी अवतार के मूल है, इसलिए कृष्ण की भक्ति ही शुद्ध और सर्वश्रेष्ठ भक्ति। इस प्रकार सुध गोस्वामी कहते हैं, यह 24 अवतारों की कथा मैंने सुखदेव गोस्वामी के मुख से सुनी। जब सुखदेव गोस्वामी परीक्षित को कथा सुना रहे थे, मैं पीछे बैठा था, मुझे देखकर उन्होंने मुझे आगे बुला लिया। तब शौनक जी कहते हैं, सूत सूत महाभाग वदनो वदताम्बर, आप तो बोलने में श्रेष्ठ हो, महाभाग्यशाली हो। कथाम भागवती पुण्याम यदा भगवान शुक, आप हमें सुखदेव गोस्वामी के मुख से जो कथा हुई वह सुनाई। कस्मिन युगे प्रवृत्तयम स्थाने वा काल हेतुना कुत संचोदित कृष्ण कृतवान संहिता। कौन से युग में और किस प्रकार किस स्थिति में सुखदेव गोस्वामी ने यह कथा सुनाई, कृपया करके आप हमें बताइए। और स गो दोहन काल मात्रम ही गृहेशु गृह मेदी नाम, जो सुखदेव गोस्वामी एक जगह पर जितने समय तक गाय को दोया जाए उतना समय तक ही खड़े रहते हैं, वे 7 दिन 7 रात तक एक जगह पर कैसे बैठे रहे, कृपया करके यह कथा हमें सुनाए। इस प्रकार जिज्ञासा करते हैं और जिज्ञासा का उत्तर भागवत की रचना कैसे हुई यह प्रश्न पूछा गया है, और भागवत की रचना कैसे हुई इसका उत्तर भागवत के प्रथम स्कंद के 7वें अध्याय में बताया गया है। श्री वेद व्यास जी जो भगवान के शक्तावेश अवतार है, ऐसे वेद व्यास जी 4 वेद 17 पुराण 108 उपनिषद रामायण महाभारत ये सभी ग्रंथ लिख कर बैठे थे, लेकिन फिर भी उसे मन में शांति नहीं थी। और तो विचार करो, वेद व्यास जी जो लिख कर बैठे हैं खुद को शांति नहीं है, वह पढ़कर हमको शांति कैसे हो सकती है। कुछ लोग कहते गणपति पुराण, शिव पुराण, ये पुराण, वो पुराण, लेकिन ये सब पुराण पढ़ के वेद व्यास जी को ही शांति नहीं है तो हमें कैसे हो सकती। इसलिए यह सब शास्त्र सुनने और पढ़ने का आग्रह नहीं रखना चाहिए। वेद व्यास जी बहुत दुखी थे, क्या कमी रह गई है मेरे लिखने में। अलकनंदा की पवित्र धारा में स्नान करके बैठे थे, उसी समय भगवान के मनोअवतार नारद मुनि वहां पर पधारे और नारद मुनि ने वेदव्यास जी को कहा कि वेदव्यास जी आपने आत्मा और परमात्मा के बारे में बहुत कुछ लिखा है, बड़े बड़े ग्रंथ के थोथा भर भर कर आपने लिखा है आत्मा क्या परमात्मा क्या, परंतु भगवान श्री कृष्ण की शुद्ध विशुद्ध लीला का वर्णन आपने नहीं किया है। यतवाग विसर्गो जनताद विप्लवो, जिस वाणी में बहुत सुंदर अलंकार हो, बहुत सुंदर भाषा हो, परंतु भगवान का गुणगान न हो, कृष्ण की गुणगान न हो, ऐसी वाणी को आचार्य साधु लोग कौवे का तीर्थ कहते हैं, यत वायसम तीर्थ। परंतु कोई बालक भी यदि कितने भी त्रुटियों में भी भगवान का गुणगान करने के लिए बैठा हो तो बड़े बड़े महामुनि उसमें अवगाहन करते हैं, भगवान की लीला रचित। नारद मुनि वेदव्यास जी को कहते हैं कि हे वेदव्यास जी, क्योंकि तुम मेरे शिष्य, इसलिए कह रहा हूं संसार में कुछ भी आप लिख दो, परंतु जब तक भगवान श्री कृष्ण रचित श्रीमद् भागवतम की रचना नहीं करोगे तब तक आपको भी शांति नहीं मिल सकती है और आने वाले कलयुग में भी किसी व्यक्ति को शांति नहीं मिलेगी। तुम स्वयं शांति और सुख प्राप्त करना चाहते हो, कलयुग के लोगों को भी सुख और शांति प्रदान करना चाहते हो, श्रीमद् भागवत की रचना करो। और दूसरे की क्या बात कहूं, मैं स्वयं, मेरा पहला जन्म ब्रह्मा जी के गोद से हुआ था और मेरे पिता ने मुझे प्रजा उत्पत्ति करने के लिए, विवाह करने के लिए कहा, परंतु मुझे ब्रह्मचारी रहना था। मैंने कहा मुझे ब्रह्मचारी रहना है, पिता ने मुझे श्राप दे दिया और तुरंत मैं उपबरहण नाम का देवता बना। एक दिन उस उपबरहण नाम के देवता के शरीर में पुष्कर क्षेत्र में अप्सराओं के प्रति गलत दृष्टि डालने पर ब्रह्मा जी ने दूसरी बार श्राप दे दिया, मुझे शूद्र योनि में जाने के लिए कह दिया। तब मेरा तीसरा जन्म द्रुमिल गोप और कलावती के गर्भ से शूद्र के रूप में जन्म हुआ। जन्म होते ही मेरे पिता द्रुमिल गोप मर गए और माता दूसरे के घर पर बर्तन मांझकर रसोई बनाकर अपना जीवन निर्वाह कर। एक समय की बात, चतुर्मास का समय था, बड़े बड़े साधु संत महात्मा हमारे गांव में आए थे और उनकी सेवा करने का मौका मेरी माँ को मिला, तो रात दिन मेरी माँ उनके लिए भोजन बनाती, सेवा करती, और उस समय मैं उस साधु की टोलियों में बैठता था और साधुओं की टोलियों में बहुत सुंदर कृष्ण कथा होती थी और कथा के बाद प्रसाद खाते थे और उसका प्रसाद का उच्छिष्ट जूठन खाता था मैं, हे दयाजी सत्य कह रहा हूँ, उस साधु के मुख से भागवत कथा सुनकर और उच्चिष्ट लेपान अनुमोदित तो द्विजे, वह कथा सुनकर और उच्चिष्ट गाकर आज मैं द्रुमिल गोप था, गोप के शरीर में था, शूद्र था, परंतु भागवत कथा सुनकर आज मैं नारद बन गया, ऐसा शरीर प्राप्त हो गया, जब चाहूं तहां जा सकता हूं, अब व्याहत गति से संसार की फ्लाइट को भी पेट्रोल डालना पड़ता है, परंतु नारद जी मन की गति से जब चाहे तहां जा सकते हैं। कारण क्या है? भागवत। मेरा अपना अनुभव है, नारद मुनि वेद व्यास जी को इतना कह के चले गए। वेद व्यास जी नारद मुनि की बात को हृदय में धारण किए और मन ही मन वेद व्यास जी सोचे कि बहुत बड़ी गड़बड़ हो गई है। तब वेद व्यास जी अब तो निर्गते नारद सुत भगवान बादरायण, भगवान बादरायण वेद व्यास जी के जाने के बाद, नारद मुनि के जाने के बाद वेद व्यास जी ब्रह्म नद्या सरस्वत्याम आश्रमे पश्चिमे तटे सम्यापास इति प्रोक्त ऋषिनाम सत्र वर्धन, बद्रीनाथ में सम्यापास नाम के अपने आश्रम में अपने सभी शिष्यों को बाहर निकाल दिया, चलो जाओ कुछ दिन के लिए छुट्टी है, क्योंकि भागवत की रचना करनी थी। वेद व्यास जी समाधि में बैठे हैं, जल से आचमन किए हैं और समाधि में बैठकर भक्ति योगेन मनसी, भक्ति योग के द्वारा सम्यक प्रणी हिते मले अपश्यत पुरुषम पूर्णम मायाम च तदपाश्रय। समाधि में वेद व्यास जी बैठे हैं और समाधि में बैठकर सबसे पहले वेद व्यास जी ने भगवान परम पुरुष कृष्ण का दर्शन किया और कृष्ण के दर्शन के बाद तुरंत वेद व्यास जी ने समाधि में माया का दर्शन किया। इस जगत की माया, कबू स्वर्ग उठाए कबू नरक दुबाए, राज दंड येन येन नदी ते चुबाए, संसार को सबको दुखी करने वाली, नरक में भेजने वाली, कभी स्वर्ग में, कभी मनुष्य, कभी गधा, कभी बैल, कभी कुत्ता बनाने वाली, यह माया का दर्शन किया और देखा। वेद व्यास जी समाधि में बैठकर देख रहे हैं इस माया के कारण संसार के सब लोग दुखी है, मन ही मन में सोच रहे हैं कि संसार के लोगों को माया से मुक्त कराने के लिए क्या करूं, अनर्थ उपशमम साक्षात भक्ति योगम अधोक्षज। वेद व्यास जी को उत्तर मिल गया, संसार के लोगों को दुख रूपी माया से मुक्त करने के लिए एकमात्र भगवान की भक्ति करनी होगी और भक्ति करने के लिए भागवत पढ़ना होगा। वेद व्यास जी ने समाधि में देखा भागवत की रचना करनी है, तब उस समय समाधि में वेद व्यास जी बैठे हैं और समाधि में बैठे बैठे वेद व्यास जी ने 1270 उवाच, 18,000 श्लोक, 5,076,000 शब्द और 12 स्कंद वेद व्यास जी बोल दिए और इस प्रकार वेद व्यास जी अपनी समाधि में बैठकर श्रीमद् भागवत की रचना कर दिए। बोलो ग्रंथराज श्रीमद् भागवतम की, ग्रंथराज श्रीमद् भागवतम की जय, भागवतम की
जय।
लोकश्च जानतो विद्वाम चक्रे सात्वत संगीताम, लोगों का कल्याण करने के लिए, जगत का कल्याण करने के लिए वेद व्यास जी ने यह सात्वत संहिता का निर्माण कर दिया। यदि कोई यह सात्वत संहिता श्रीमद् भागवत का श्रवण करेगा निश्चित उसका हित हो सकता है, परंतु इस भागवत से मुक्ति और उद्धार करने के लिए यस्याम वे श्रुय माणायाम, इस भागवत को सुनना होगा और सुनकर कृष्ण परम पुरुषे भगवान में भक्ति उत्पन्न करनी होगी और इससे शोक मोह और भय दूर हो जाए। सभी दुखों से मुक्त कराने वाली यह भागवत वेद व्यास जी ने निर्माण किया और इस भागवत को वेद व्यास जी ने अपने पुत्र सुखदेव गोस्वामी को पढ़ाया। अब वेद व्यास ने सुखदेव गोस्वामी को कैसे भागवत पढ़ाया, सुखदेव गोस्वामी का कैसे जन्म हुआ, ये सुखदेव गोस्वामी के जन्म की कथा देवाधिदेव महादेव भोलेनाथ शिव जी के साथ जुड़ी हुई है और हमारा समय हो चुका है, इसलिए यहां पर मैं इस कथा को विराम देता हूं। श्रीमद् भागवत का अवतरण हो चुका है, अब आगे कथा आएगी किस प्रकार से वेद व्यास जी इस भागवत कथा अपने पुत्र को पढ़ाएंगे और किस प्रकार इस भागवत में पांडवों के जीवन चरित्र और कल कुंती महारानी की प्रार्थना, पितामह भीष्म की प्रार्थना और कल बहुत सुंदर दिव्य सुखदेव गोस्वामी का परीक्षित महाराज के पास आगमन होगा। तो आप सब लोग कल के दिव्य उत्सव में पधारे और बिल्कुल श्रद्धा के साथ समय सर यहाँ पर हाजिर हो जाइए और अपने जीवन को धन्य कीजिए।
हे गोविंद, हे गोपाल, हे गोपाल राधे कृष्ण गोविंद गोविंद, हे गोपाल राधे
Oh,
Hare Krishna.